सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं विभूति मिश्रा।
श्रोताओं नमस्कार, आज हम केंद्रीय कैबिनेट के जो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं उस पर बातचीत करने जा रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमान हैं केवी प्रसाद। केवी प्रसाद, आपका सुर्खियों में स्वागत है।
धन्यवाद विभूति जी, और आपको और श्रोताओं को नमस्कार।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट ने पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम में संशोधन को मंजूरी दी है। इसको लेकर आने वाले समय में किसानों के कल्याण को लेकर आप क्या वातावरण देख रहे हैं?
हमारे देश में करीब 2019 से ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसका लक्ष्य है कि 2025 तक जो दो खास रोग हैं पशुओं में जो देखा जाता है देश में, एक को जिसको हम कहते हैं फुट एंड माउथ डिसीज, जिनको खुरपका और मुंहपका जो है रोग, और दूसरा जो है बोरोसिस, जो कि खासकर प्रसव के वक्त होता है पशु में। तो ऐसे में 2019 में जो इसका परिकल्पना की गई थी, तो जैसे मैंने कहा कि 2025 तक ये चाह रहे थे कि इसको नियंत्रण में लाया जाए, और लक्ष्य है कि 2030 तक ये जो है पूरी तरह से इसको खत्म किया जाए, इसको जड़ से उखाड़ दिया जाए। तो इसी प्रयास में भारत सरकार ने ये कार्यक्रम चलाया है, और आज जैसे हमारे को बताया गया ब्रीफिंग के दौरान कि सरकार की तरफ से करीब करीब 9 राज्यों में जो ये खुरपका और मुंहपका जो रोग है ये तकरीबन 9 राज्यों में पे खत्म हो रहा है। साथ ही साथ करीब 108 करोड़ जो है कहते हैं ये इस तरह के इस पे टीके लगाए गए हैं, ताकि जो पशुधन है खासकर 2019 से लेकर करीब 7-7.5 करोड़ उस पे कम करने के लिए उस पे रोक लगाया है, और उसमें साथी हुई। और माना जा रहा है जो आंकड़े हैं सरकार के पास उसके हिसाब से जो ये खासकर पशुधन है और हमारे जो भैंस है उसमें जो ये इस तरह की जो रोग जो जिसका फैलता था इसमें कम से कम जो 2018 का जो आंकड़ा है कि 227 अगर थे वो कम होके 41 हो गए पिछले साल सितंबर तक। तो जिस तरह से और खांसी खास इसकी जो ज्यादा सीवियरिटी थी जो ज्यादा वो कम हुई, और काफी सारे लोग इसके बारे में बताने लगे। विभूति जी,
जी हमारी बातचीत जारी रहेगी। इसी बीच पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है, सुन लेते हैं।
देश में लाइव स्टॉक को किस तरह से एक मेजर उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आए वो इस प्रोग्राम का एम है। इसका जो मेजर थ्रस्ट रहेगा वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू रहेगा। एक भारत पशुधन पोर्टल बनाए, जैसा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना है वैसा ही इसमें पशु औषधि योजना बनाई गई है, जिससे कि क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन दिए जा सके, और जो किसान समृद्धि केंद्र बने उनके माध्यम से पशु औषधि का वितरण किया जाएगा। पूरे प्रोग्राम से किसानों की जीवन में और इम्प्रूवमेंट आएगा।
किसानों को जो नई योजना है जिसकी आज मंजूरी मिली है, इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं?
देखिए, जो आज खास जो इसके लिए करीब 4,000 करोड़ जिसका बारे में रखा गया था, जिसके पर जो कैबिनेट की अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी की उसमें जो हुआ, जैसे मैंने कहा लक्ष्य जो देखा गया, क्योंकि 2023-24 में जो वैक्सीनेशन जो टीकाकरण हुआ वो काफी हद तक कई राज्यों में पूरा हो गया है, और इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि कई राज्य हैं जहां ये काम पूरा हो चुका है, और फुट एंड माउथ डिसीजेस को अगर आप ध्यान रहें कि भाई किसानों की जो आमदनी की जो तैयारी हो रही है कि उनका जो इनकम बढ़ाया जाए, उसमें पशुधन एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है, और उसमें चाहते हैं क्योंकि काफी हद तक खासकर जो जो किसान जो कि डेयरी क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं और तरह से जो है, तो उनके लिए ये खासकर ये कार्यक्रम जो है लाभकारी सिद्ध होगा। और इसीलिए जैसे 9 राज्य मैंने गिनवाए थे जहाँ की तकरीबन ये खुरपका और मुंहपका जो रोग है इसमें तकरीबन एक तरह से तैयारी हो रही है फर्स्ट फेज में, उसे पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, मतलब पूरे देश में, गुजरात, महाराष्ट्र, तो आप देखेंगे तो दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और तमाम सारे राज्यों में ये इसका फैलाव है। सबसे बड़ा तो हम जानते हैं कि 2000 खरीफ एमएसपी की जो खरीफ जो है जो 2024 और 25 के जो मार्केटिंग सीजन है उसके लिए करीब करीब 2,00,000 करोड़ के प्रावधान किया गया, और सारे कई सारे कार्यक्रम है जिसमें सरकार चाहती है कि व्यापक रूप में कार्यक्रम तैयार किया है ताकि किसान और खेती लाभदायी हो।
जी, खास बात यह है कि जेनरिक दवा की भी चर्चा हुई है और खास करके एक और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई को भी मंजूरी मिली है, इससे क्या लाभ देख रहे हैं आप?
जी देखिए, हम सब जानते हैं कि ये सब मोबाइल जिस भी आपकी बात कर रहे हैं कि स्वचालित जो जो यूनिट है जो कि समस्या देखे पशुधन की, तो वो किसान के घर तक पहुंचे वहां जाके, क्योंकि वरना अन्यथा कहीं दूर में अगर आपका कोई क्लिनिक है वहां ले जाने में किसानों की अपनी समस्या है, आसानी होगी कि उनके द्वार तक ही आप पहुंच रहे हैं सरकार और वहीं पे आपको देखेंगे। साथ ही साथ जो आपने बात की भारत के, जैसे मैंने कहा भारत पशुधन का जो पोर्टल है जिसमें कि गन्ना के लाइव उसमें मॉनिटरिंग हो सकती है, और जो सबसे बड़ी बात है पशु औषधि, ये वही अगर आप देखिए हम जन औषधि प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था ताकि सस्ते दर पे लोगों को क्वालिटी दवाइयां मिले, ताकि जो आम नागरिक है जिनको समस्या जो जूझ रहे हैं अपने शारीरिक समस्याओं से या बीमारी से, तो कम खर्चे में उनकी दवाई मिले। तो उसी तहत ये देखिए कि पशु के लिए भी औषधि, ताकि उनको भी क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण जो है दवाइयां मिले जो कि जेनरिक हो, ताकि उसमें खर्चा कम आए लेकिन काम पूरा करे। और साथ ही साथ देखिए एक बहुत बड़ी बात है, जो हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है खासकर पशुधनों के साथ पशुओं की जो समस्या, उसको जो उसका इलाज करने के लिए जो हमारे यहाँ पारंपरिक पद्धति है उसको भी, जिसे कहते हैं सरकार, उसको भी प्रोत्साहन कर रही है ताकि दोनों साथ में साथ चले। विभूति जी
जी कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड राज्य में केदारनाथ रोपवे पर अब काम शुरू होने वाले हैं। लागत इसका 4,081 करोड़ है। सबसे पहले इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है, सुनते हैं।
8 to 9 आवर्स की जो जर्नी है दैट विल बिकम अ जर्नी ऑफ 36 मिनट्स, और ये जो टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है दैट इज कॉल्ड 3S टेक्नोलॉजी, 36 लोगों के बैठने की कैपेसिटी उसमें, और ये बहुत सेफ टेक्नोलॉजी है। दुनिया के जो जाने माने टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं उन लोगों के साथ मिलके इसको डिजाइन किया गया है। श्रद्धालुओं को तो बेनिफिट होगा ही होगा, और साथ ही साथ बहुत बड़ा जो लोकल बिजनेसेस हैं उनको बेनिफिट होगा, और जो दिव्यांगजन है जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं उन सब के लिए भी एक बेनिफिट इससे निकलेगा।
जी केवी प्रसाद जी, केदारनाथ रोपवे ये जो है इससे निश्चित तौर पे श्रद्धालु हैं वो काफी लाभान्वित होने वाले हैं, लेकिन खास करके जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए तो ये बहुत ही एक वरदान साबित होने वाला है। आप इसे किस रूप में देख रहे हैं?
विभूति जी ये तो बिल्कुल सही है कि ये केदारनाथ, हम सब जानते हैं कि जो भारत में जो है चार धाम यात्रा बहुत ही मान्य रखते हैं लोग, और खासकर ग्रीष्म काल के आगमन पे लोग इंतजार करते हैं कई महीनों से, तो उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे हम सब जानते हैं रास्ता बड़ा कठिन है, दूर भी है और काफी सारे जैसे वक्त लगता है। और केदारनाथ सब जानते हैं कि 12 जो हमारे ज्योतिर्लिंग है उसमें एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, और इतनी ऊंचाई में है, करीब 12,000 फीट के ऊपर रुद्रप्रयाग में है। तो ऐसे में इसमें आज तक जो तरीका है वो सब जानते हैं कि जो सोनप्रयाग से करीब 20-21 किलोमीटर का जो रास्ता है उसमें 5 किलोमीटर ही आप जो है सड़क के यातन से गौरीकुंड तक जा सकते हैं, बाकी जो रास्ता है आपको पैदल, और वो भी ऊपर का पहाड़ी का इलाका है गौरीकुंड से आगे। पिछले 2023 में सरकार के पास जो आंकड़े हैं करीब 23 लाख श्रद्धालु पहुंचे थे। तो ऐसे में जो ये अब जैसे हमने मंत्री जी को भी सुना थोड़ी देर आपने बात कही
जी,
तो काफी हद तक इसकी वक्त करीब 8 से 9 घंटे वक्त है इसमें लगता है, क्योंकि पैदल यात्री चलते हैं अलग अलग सबकी वक्त लगता है। तो ऐसे में ये जो नई चीज लाएंगे तो एक तो बहुत जल्दी ही 36 मिनट जैसे उन्होंने बताया, और 36 लोगों के सुरक्षित तरीके से जा सकते हैं आराम से, और 3 जाके आ सकते हैं। तो इसे जाहिर से हम सब जानते हैं कि इसमें काफी लोगों को यात्रा जिसे कहते हैं ना सिर्फ सुचारू होगा, तेज होगा, एक पर्यावरण के दृष्टि से देखा जाए ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहां पे 5 किलोमीटर तो गाड़ियों का आवाजमन थोड़ा कम होगा पर्यावरण के दृष्टि से भी, और ये रोपवे जो है वो चलता रहेगा जो करीब जो भी किलोमीटर इसका है। तो जैसे आपने खुद भी कहा जो हमारे वयस्क ना है जो शारीरिक रूप से कोई ना कोई कष्ट है उनके चलने में या बाधा आती है उनके लिए और दिव्यांगजनों के लिए खासकर, ये बहुत ही लाभकारी और उपयोगी सिद्ध होगा। विभूति जी
जी इसकी समय सीमा जो है वो निर्माण के लिए 6 साल रखी गई है, लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि 8-9 घंटे जहां लगते हैं वहां लोग 36 मिनट में वहां पे पहुंच जाएंगे, और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक पवित्र केदारनाथ का दर्शन, वाकई ये रूपवे बन जाना एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा ये।
जी बिल्कुल, और जैसे कहते हैं कि देखिए विश्व में कई सारे हमने देखे हैं, कई सारे दृश्य देखे हैं, कई सारे हमने पिक्चर्स देखे हैं, रोपवेज बनते हैं आपके स्विट्जरलैंड में तो बहुत बड़ा मशहूर है, या अलग अलग स्की रिसोर्ट्स में, तो इसको एक नए तरीके से इस प्रयोग करना, खासकर जैसे हमने कहा कि जो सरकार का जो अंदाजा है कि ये जो अगर बन जाएगा रोपवे जो करीब 13 किलोमीटर का रास्ता है और करीब 36 मिनट जो की बात कही है, तो कम से कम 1800 लोग एक दिशा में वो सफर कर सकते हैं 1 घंटा प्रति घंटा। तो इससे दो चीज जरूर होगी कि ज्यादा श्रद्धालु आराम से दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं और दर्शन करके वापस आ सकते हैं बिल्कुल आराम से। और दूसरा ये है कि जैसे मैंने कहा, जैसे आपने भी कहा कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो जिनको शारीरिक समस्याएं हैं और बाकी सारे जो हमारे दिव्यांगजन हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा लाभकारी और उपयोगी सिद्ध होगा। और जैसे आपने कहा, एक धार्मिक स्थल है पूरे साल, जैसे हम सब जानते हैं कि अभी मार्च अप्रैल आने के बाद लोग अलग अलग राष्ट्रों अलग अलग राज्यों से चलते हैं कि चार धाम यात्रा करें। और अगर आप देखें, ये हमारी जो सरकार की जो चार धाम यात्रा का जो पूरा प्रोजेक्ट है, कई सालों से इस पे चल रहा है और काम हो रहा है, तो ये उसी में एक तरह से अग्रे कदम है। विभूति जी,
जो उत्तराखंड में आज गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब रोपवे का के निर्माण का भी फैसला हुआ है, सबसे पहले इस पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं।
इस प्रोजेक्ट से हमारे देश भर से श्रद्धालु भक्तों को, टूरिस्ट को, सबको जाने का बड़ा मौका मिलेगा। जैसे पिछले साल करीब करीब 1,77,000 लोग गए, और जितना लोगों को जाने में इंटरेस्ट है, उससे लगता है कि ये प्रोजेक्ट के होने के बाद में 10 गुना बढ़ जाएगा।
जी केवी प्रसाद जी, इसको लेकर भी अगर हम सबसे पहले इससे होने वाले लाभ और जो सहूलियत है उस पर बात करें तो क्या कहेंगे आप?
जी विभूति जी, बिल्कुल सही है। जैसे हम सब जानते हैं, हेमकुंड साहिब जी एक बहुत ही दर्शनीय स्थल है, जो कि 15,000 फीट चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड राज्य में। और चूंकि यहाँ पे सिख समुदाय के लोग और जो हमारे बाकी जो समुदाय हैं, वे भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे माना जाता है एक तो गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु हैं, उनके वहाँ पे जो उन्होंने मेडिटेशन किया इस साइट पे, ऐसा एक लोग इसलिए वहाँ पे सुमन अर्पित करने जाते हैं श्रद्धा के लिए। साथ ही साथ माना जाता है कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने भी इसी वहां पे जाकर अपना ध्यान कर रहा था। तो ऐसे में ये दोनों चीजें हैं, लेकिन इस वक्त जो समस्या है ना, कि एक तरह की जो वेदर को लेकर बात होती है कि सिर्फ 5 महीने ही ये गुरुद्वारा जो है गुरु साहिब जी का वो खुला रहता है, और वो मई सितंबर के बीच। और जैसे अभी हमने मंत्री अश्विनी जी को सुना, सिर्फ 1.77 लाख ही श्रद्धालु यहाँ पहुंच पाए, वो भी इस 5 माह के दौरान। एक बारी जब इस तरह से फिर से जैसे रोपवे यहाँ पे तय हो जाएगा और तैयार सुचालित हो जाएगा, तो काफी सारे लोग ज्यादा संख्या में पहुंच सकेंगे अपना श्रद्धा और अपने आस्था जो जताते हुए। साथ ही साथ आसपास में दो एक बड़े जो रस्ते में जैसे कहते हैं, वहां पे एक वैली ऑफ फ्लावर्स एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको यूनेस्को की मान्यता मिली हुई है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट के, तो वो भी एक बहुत वहां पे काफी मात्रा में पर्यटक जाते हैं हर साल। तो ये दोनों में लाभकारी और उपयोग होगा, ऐसा मानना है हमारा। विभूति जी,
केवी प्रसाद, आप सुर्खियों में आए और हमारे श्रोताओं को आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केवी प्रसाद, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे विभूति मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdetox@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में